नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 26 के श्लोक संख्या 8 पर चर्चा करने जा रहे हैं। कार्य कारण कृतत्वे कारणं प्रकृतिं विदो भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम् कार्य कारण कृतत्वे कारणं प्रकृते विदो भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम् कार्य कारण कृतत्वे कारणं प्रकृतिं विदुम् भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम्। कार्य कारण कृतत्वे कारणं प्रकृतिं विदो भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम्। कार्य कारण कृतत्वे कारणं प्रकृतिं विदो भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम्। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृते विदुम् भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम्। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृते विदुम् भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम्। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदो भोक्तृत्वे सुख दुःखानां काल कारण कृतत्वे कारणं प्रकृतिं विदो भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते। इसका अनुवाद पढ़ेंगे हम सब साथ में। बद्ध जीव के शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य बहस दिवैन श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में कहा गया है कि जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे आत्म माया द्वारा पुरुष के रूप में आते हैं। वे किसी परा प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, वे स्वेच्छा से आते हैं और इसे ही उनकी लीला कहा जा सकता है। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बद्ध जीव को प्रकृति के तीन गुणों के अधीन किसी विशेष प्रकार का शरीर तथा इंद्रियां धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसे ये शरीर अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को स्वतंत्र चुनाव करने की छूट नहीं होती। उसे अपने कर्म के अनुसार कोई ना कोई शरीर स्वीकार करना पड़ता है। किंतु जब शारीरिक प्रकृतियां होती हैं, जैसे कि सुख तथा दुख में अनुभव की जाती हैं, तो ये समझना चाहिए कि इसका कारण स्वयं आत्मा है। यदि आत्मा चाहे तो इसे द्वैतपूर्ण बद्ध जीव को कृष्ण की सेवा ग्रहण करके बदल सकता है। जीव ही अपने कष्टों का कारण है, किंतु वे अपने शाश्वत सुख का भी कारण हो सकता है। जब वह कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना चाहता है तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है, और जब वह अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तो उसे भौतिक शरीर प्रदान किया जाता है। आध्यात्मिक शरीर या भौतिक शरीर स्वीकार करना जीव के मन चाहे चुनाव पर निर्भर करता है। किंतु एक बार शरीर स्वीकार कर लेने पर सुख या दुख उठाना पड़ता है। मायावादी चिंतक का कहना है कि जीव शुकर का शरीर धारण करके भी अपनी लीलाओं का आनंद उठाता है, किंतु ये मत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लीला शब्द भोग की स्वेच्छा सुकृति के लिए प्रयुक्त होता है। ये व्याख्यान अत्यंत भ्रामक है। जब दुख को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़े तो वह लीला नहीं है। भगवान की लीलाएं तथा बद्ध जीव द्वारा कर्म फल की सुकृति समान धरातल पर नहीं होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वधाम। वंदेहां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया। वैसे तो कोई योग्यता नहीं है कि श्रीमद् भागवत जैसे स्पेशल ग्रंथ के ऊपर कुछ वर्णन करें, परंतु गुरु महाराज की कृपा से, अपने गुरुदेव रिजोनेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से बोलने का प्रयास करूँगा। कुछ त्रुटि हो तो सारे वरिष्ठ भक्त हैं आप, मुझसे सबसे छोटा मैं हूँ, तो क्षमा करिएगा मेरे बेटे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का जब हम चर्चा करते हैं अपनी मॉर्निंग क्लास में, श्रील प्रभुपाद कहते थे नित्यम भागवत सेवाया, भागवत की सेवा नित्य होनी चाहिए। दो प्रकार से भागवत की सेवा की जाती है, एक होती है नित्य अध्ययन करने से और एक होती है नित्य श्रवण करने से। तो श्रवण करने में जब हम श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्यान, तात्पर्यों की व्याख्यान करते हैं, तो वो हम अपनी मनोधारणा से करते हैं, अपनी समझ से करते हैं। लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद जी के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को कहे गए या सुत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि ऋषियों को कहे गए, तो इस प्रकार के जो संवाद हैं उनको प्रभुपाद कहते थे उच्च स्वर में बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? उच्च स्वर में। जितना ज्यादा हम उच्च स्वर में इन श्लोकों को उच्चारण करेंगे, उतना ज्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा। मॉर्निंग भागवतम क्लास में, सारी भागवतम क्लास जो एक घंटा चलती है, उस क्लास का सबसे मुख्य अंश है प्रारंभ। प्रारंभ मतलब श्लोक बोलना, श्लोक को रिपीट करना, दोहराना, और सबका उच्च स्वर में श्लोकों को पढ़ना। इस वाणी को देववाणी कहते हैं, जो ये भागवत वाणी है इसको देववाणी कहते हैं संस्कृत भाषा। देववाणी को जितना अधिक हम उच्चारण करेंगे उतना अधिक शुद्धिकरण होगा, इसीलिए कहा गया नित्यम भागवत सेवाया। तो भागवत सेवा का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कार्यकारिणी करते कराते घूमते फिरते आकर के कक्षा में बैठे। ज्यादातर मानसिक धारणा यह है कि जय राधा माधव हो जाए, श्लोक हो जाए, ओम अज्ञानम तिमिरं धस्य हो जाए, जब लेक्चर शुरू होगा देन आई विल रीच, तब मैं जाऊंगा कुछ नया सुनने के लिए मसाला, है ना। लेकिन सच्चाई देखी जाए तो ये मसाला मनोधारणा का है, इससे पहले का है ओरिजिनल ड्राई फ्रूट्स। तो आपको क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट या फिर नकली मसाला? तो ड्राई फ्रूट तो निकल गया, अभी मसाला है वो मेरा बनाया हुआ, नकली है। तो प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हमने पढ़ा, इसको पढ़ने मात्र से शुद्धिकरण होगा। ये नित्यम भागवत सेवा है, उच्च स्वर में, इसलिए रिपीट करना सिखाया गया रोज रोज। तो ये बहुत ही उत्तम होगा कि हम श्रीमद् भागवत के बारे में थोड़ा समझें। जैसा हम प्राय देखते हैं, मैं जहां भी कक्षा के लिए जाता हूं, प्रयास रहता है कि श्रीमद् भागवतम के महिमा गान करें। जैसे महाराज कहते हैं कि अधिक से अधिक भागवत प्रचार करो, तो भागवत प्रचार करते वक्त भागवत की महिमा ही नहीं जानते हो तो कैसे हम भागवत के प्रति शरणागत होंगे। जैसे मान लीजिए आपके बीच में आकर के एक साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बैठ जाए, और आप सोचेंगे कि ठीक है, एक व्यक्ति है, इनिशिएटेड भी नहीं है, तीन कंठी माला भी नहीं है, तिलक भी नहीं है, न्यू फाइट होगा। न्यू फाइट मतलब जिसकी रोज रोज फाइट होती है, एवरीडे न्यू फाइट इज अ न्यू फाइट, है ना। जिसकी रोज लड़ाई है अपनी माया से, वो एक नया व्यक्ति है। तो आप कहेंगे बैठा है, लेकिन कुछ देर बाद आप पाएंगे अनाउंसमेंट होगा, देव नरसिंह महाप्रभु बोले, देव से महाप्रभु बोलेंगे, तो मुझे ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट आए हैं आज हमारे, हाँ एकदम से बौचक्के रह जाएंगे, सबकी दृष्टि उस व्यक्ति पर घूम जाएगी, अरे हमारी भागवतम क्लास में ये आए थे आज, क्या हुआ, क्यों दृष्टि घूमी? सिर्फ एक चीज जानने से, वो कौन है, इंपॉर्टेंस, महिमा। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भागवत की महिमा सुखदेव गोस्वामी ने नहीं गाई, सुत गोस्वामी ने गाई। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रवचन देकर के अपनी कथा समाप्त करके 12 स्कंद करके उठ करके चले गए थे। सुत गोस्वामी क्योंकि उनके सबसे अग्रणी शिष्यों में से एक थे, सुत गोस्वामी ने कहा, सभी ऋषि मुनि बोले, इतना सब कुछ हमने सुना 12 स्कंद, लेकिन हमें मुख्यतः ये नहीं समझ में आया कि ये भागवत ही क्यों पढ़ा जाए, और भी तो 18 पुराण है, इसी को क्यों पढ़ा जाए। वाय 18 पुराणों में कोई बोलता है शिव पुराण, अभी अभी नवरात्र चल रहे हैं, लोग बोलते हैं देवी पुराण भागवत हो रहा, भागवत देवी पुराण, तो ये बहुत प्रकार के जो कि कुछ पुराण तो है सत्वगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण, और कुछ है उप पुराण। देवी पुराण इन 18 पुराणों में भी नहीं आता, उप पुराण। तो उप पुराण, उप पुराण, इन सारे पुराण को हम पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें से भागवत पुराण क्यों पढ़े, इसकी महिमा क्या। तो सुध गोस्वामी ने फिर इसकी महिमा 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में आखिरी में कही शौनक आदि ऋषियों को। इसी प्रकार से स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अनेकों पुराणों में भागवत की महिमा गाई गई। क्यों भागवत में क्यों नहीं गाई गई, कि अपनी महिमा कभी कोई खुद अपने मुख से गाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर मैं आकर बैठूं और मैं खुद ही बोलूं मैंने ये एजुकेशन है, मैंने यहां से MBA किया था, फिर मैं इतने फुल टाइम बना, फिर मैंने, आप कहेंगे प्रभु जी भागवत करने आए थे, अपना गुणगान करने आए थे। लेकिन अगर वही प्रभु जी आकर के बोले प्रभु जी ने ये किया, ये किया प्रभु जी, ये यहां पर ये सेवा करते हैं, तो अच्छा, तो हियरर जो है श्रवण करता श्रोता उसकी दृष्टि भिन्न हो जाती है। इसीलिए इंट्रोडक्शन हमारे जो कार्यक्रम है स्कॉन के, उसमें बहुत मुख्य हिस्सा रखता है, क्योंकि सुनने वाले की दृष्टि को उस ओर मोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, अन्यथा जनरल लेने पर कान भी जनरल चीजों को स्वीकार करते हैं। जनरल अगर वही इंस्ट्रक्शन गुरुदेव के द्वारा दिया जाएगा, ध्यान से जप करो, उसका असर, और एक वही इंस्ट्रक्शन किसी और के द्वारा दिया जाएगा, उसका असर अलग है। क्यों, शरणागति अलग अलग। भगवद गीता भगवान कृष्ण पहले युधिष्ठिर को सुनाना चाहते थे, क्योंकि गीता में कहा गया कि मैं उसको सुनाऊंगा जो राज ऋषि हो। युधिष्ठिर राजा भी थे और ऋषि भी थे, उनको सुनाना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि आयु में युधिष्ठिर बड़े थे और कृष्ण छोटे। युधिष्ठिर ने रिजेक्ट कर दिया, बोले अरे काना कैसी बातें करते हो तुम, आत्मा परमात्मा, अभी जाओ बाद में चर्चा करें, सुनने को तैयार। तो पहले भूमि को तत्पर होना पड़ता है श्रवण करने के लिए, तब कुछ बात उसके हृदय में प्रवेश करती है। और वही बात जब उन्होंने अर्जुन को बताई तो अर्जुन ने शिष्यस्तम शादी माम तोम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। क्यों, शरणागति का लक्षण आ गया। और यही बात भगवान ने भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश करके जब युधिष्ठिर को सुनाई, तुरंत वो गीता का ज्ञान ले लिया, पहले क्यों नहीं लिया। तो ये जो है ना बहुत ही मुख्य है कि हम किसी की महिमा को जाने। इसीलिए हमारे आचार्यों ने महिमा गान बहुत किया, तुलसी महिमा, भागवत महिमा, कार्तिक महिमा, भाद पूर्णिमा महिमा, इन सारी महिमाओं का गान वैष्णवों को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। वैष्णव सदाचार महिमा, तिलक की महिमा, कंठी की महिमा, अगर ये महिमा ना हो, हम महिमा चौधरी की बात नहीं कर रहे, महिमा की बात कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरीज, अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सरेंडर टू पर्टिकुलर थिंग, उसके प्रति हमारी शरणागति होना बहुत मुश्किल। तो श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। 12 स्कंदों में श्रीमद् भागवत के अगर आप इसको स्कंद अनुसार देखें तो साक्षात आपको भगवान का दर्शन होगा। तो भगवान कहते हैं कि पहले दो जो स्कंद है, पहला और दूसरा, ये भगवान के चरण है। अब जब भी आप पहला स्कंद देखेंगे तो क्या दर्शन हो सकता है, भगवान के चरण रखे तो छूने में लगेगा, भगवान के चरण स्पर्श हो, दूसरा चरण स्पर्श। अब ये तीसरा स्कंद आज हम पढ़ रहे हैं, तब ये क्या है, और जब मालूम ही नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे, प्रभु जी आए गए सब गिटा भागोल, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद जो है भगवान की जंगा है, थाइज। तो तीसरा स्कंद ये लेफ्ट थाई, तो ये भगवान की लेफ्ट थाई को आज हम स्पर्श कर रहे हैं। अभी आ गया ना कि अरे भगवान की आज जंगा से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तीसरी, चौथी, पांचवा स्कंद भगवान के जो ये नाभि है, कटी प्रदेश, जहां पर भगवान काली कमल बांधते हैं ना, यहां पर ऐसे बांधते हैं, आप लोग डेकोरेशन करते हैं, DT डेकोरेशन, तो ये पांचवा स्कंद। छठा सातवां छठा स्कंद भगवान का जो ये वज्र वृक्ष स्थल आता है ना ऊपर का चेस्ट का पार्ट, ये क्या है सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ बाजू ये ऐसे। तो अभी आप सातवां आठवां स्कंद देखेंगे तो आप हमेशा सोचेंगे भगवान के हाथ हैं। अभी किसी से अगर आशीर्वाद चाहिए हो तो कहां से लेते हैं, हाथ से। तो अगर आठवां स्कंद सिर पे रख लिया तो क्या मिल गया, भगवान का हाथ का स्पर्श हो गया। सातवां स्कंद सिर पे रख लिया आशीर्वाद। नौवां स्कंद भगवान की गर्दन है, ये जहां कंठी पहनते हैं ये नौवां स्कंद है ना। और दसवां स्कंद भगवान का मुखारविंद फेस, मुखारविंद के ऊपर जो ये क्या है फोरहेड मस्तक, ये भगवान का ग्यारहवां स्कंद है। और बारहवां स्कंद जहां पर ये हमारा हेड है कंप्लीट, तो ये बारहवां स्कंद है। तो आप सोचिए अब ये बारह स्कंद में आपको एक रूप का दर्शन हो रहा होगा, है कि नहीं माता जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये रूप है भगवान का, इसमें पहले दो स्कंद क्या है बताइए, चरण, तीसरा चौथा पांचवा कटिभाग, छठा सातवां नहीं छठा भाग चेस्ट, सातवां आठवां नौवां गर्दन, दसवां मुख, ग्यारहवां मस्तक, बारहवां ऐसे है। ये भगवान खड़े साक्षात बारह स्कंद के रूप में दर्शन दे रहे हैं, हर स्थान से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा प्रभु जी आपने अपनी मर्जी से बना लिया, हमने तो वहां पढ़ा था बारहवां दसवां स्कंद हृदय है, ये स्कंद हुआ है। तो श्रीमद् भागवत के स्कंद स्कंद पुराण के तत्व संदर्भ के अंदर वर्णन है, ग्रंथो अष्ट दशस्त्रो द्वादश स्कंद समावितः है ग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र व्रता वदस्तथा गायत्री चास्मरंभस्तम भागवतम विदः। भागवत क्या है, भागवत ऐसा नहीं है कि मैं श्लोक पढूं और श्लोक पढ़ने के बाद में कुछ भी बोलने लग जाऊं, डीवाईपीएच सेशन शुरू कर दूं, डिस्कवरी ऑफ परमानेंट, दैट इज नॉट भागवत। भागवत का मतलब है ग्रंथो अष्टदश सहस्त्रो, जिस भागवत के अंदर वो ग्रंथ जिसमें अष्टदश मतलब 18,000 18,000 श्लोकों की चर्चा हो, कम से कम चार पांच एक श्लोक पर चर्चा हो, श्लोक पर चर्चा। जितनी भागवत चल रही है हजारों हजारों पंडालों में, कहां आपने देखा कि चर्चा के अंदर श्लोकों पर चर्चा होती है। 3 घंटे की भागवत कथा पंडालों में होती है, उसमें 1.5 घंटा म्यूजिक बजता है कि नहीं, और उसमें कहीं पर भी भागवत के बारे में चर्चा नहीं, श्लोक तो बोलना आता ही नहीं। आजकल तो माताएं भी भागवत करती हैं, जबकि पद्म पुराण में लिखा है भागवत करने के लिए ब्रह्मचार्य का जीवन पालन करना होता है, भूमि पर शयन करना होता है, 7 दिनों तक उस व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना होता है, अन्न जल का त्याग करना होता है, व्रत का सेवन, व्रत जैसे हम करते हैं कार्तिक व्रत या फिर भीष्म पंचक, उस प्रकार के व्रत में वो सप्त कर सकता है। है ऐसे कोई वक्ता, फिर भी चल रहे हैं पंडाल प्रोग्राम्स, उसमें ज्यादातर वही है राधे 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 राधे, लोग भी डांस करते रहते हैं और वो ऑक्टापैड्स और वो सब बजता रहता है डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग, और फिर बीच बीच में बस वो जैसे कोई आता अवतार करते रहते हैं, हर 3 मिनट में एक अवतार होता है, बोलो वावन भगवान की, हर 15 मिनट में भगवान अवतार हो जाता है। क्या प्राय था, मुख्य कारण क्या था, गौण कारण क्या था, भागवत का विशेष कारण सब मिसिंग है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा ये जो भागवत हमारी है नित्यम भागवत सेवा, 7 दिन भागवत सेवा है, बोला 7 दिन भागवत सेवा है, ऐसा श्लोक है नित्यम एवरीडे। तो ये जो भागवत कथाएं चल रही उनसे हमको यहां घुमाने के लिए श्लोक बोला गया, द्वादश स्कंद समावित, 18,000 श्लोकों को द्वादश 12 स्कंदों में भाग किया गया है। इन 12 स्कंदों की चर्चा करते वक्त ध्यान देने योग्य है, हैग्रीव हैग्रीव भगवान की चर्चा हो, ब्रह्म विद्या यत्र व्रतः, व्रतासुर के वध की लीला का चर्चा होनी चाहिए। व्रतासुर कौन था, चित्रकेतु महाराज क्यों व्रतासुर बन जाते हैं, क्यों व्रतासुर इतना बड़ा भक्त बन जाता है कि इंद्र के वज्र के सामने नतमस्तक होकर सीधा वैकुंठ चला जाता है, एक राक्षस वैकुंठ चला जाता है, क्या इनके पीछे के अभिप्राय है, क्या कारण है, इसको कहते हैं भागवत। इस भागवत को सुनने के लिए भागवत वक्ता होना चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति भागवत सुना दे, भागवत सुनाने के लिए भी वक्ता, 3 प्रकार के भागवत है, एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत तो है श्रील प्रभुपाद जी के आदरणीय ग्रंथ, जिन्हें प्रभुपाद जी ने बहुत ही मुश्किल से रात रात जग जग के हमारे लिए लिखा, इसे कहते हैं ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत भी तीन प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप? भक्त भागवत तीन प्रकार के भक्त भागवत होते हैं। लोग बोलते हैं हाँ तीन होते हैं, एक होते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, वो भक्त होते हैं। हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं। भक्त भागवत तीन प्रकार के होते हैं और ये वर्णन किया गया है, अतः भक्त सिद्ध स्त्रात्रिविधि प्राप्त पार्षद भागवत देहा निर्धूत काशाया मूर्छित काशायश्च। तीन प्रकार के भागवत हैं। पहला है भागवत देहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन जीते जी भागवत को अपने जीवन में उतारा, मतलब एप्लीकेशन में लेके आया, तो ये कोई साधारण नहीं है कि श्रवण किया, प्रसाद खाया, 10 बजे के बाद बोलते हैं प्रभु जी आप वही हो जो वहां पर दंडवत कर रहे थे भागवत क्लास में। 10 बजे से पहले का भक्त और 10 बजे के बाद के भक्त में बड़ा भेद होता है ना। सुबह बेचारा कितने विनम्रता से मंगला आरती में होता है, धीरे 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 उसके अंदर की चेतना जागृत होती है और वो व्यक्ति क्या होता है, जागृत होती है और फिर उसके बाद वो बदल जाता है पूरा। फिर काउंसलर को बुलाना पड़ता है, पेन टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ता है, प्रभु जी देखिए ये मान नहीं रहे, प्रभु जी देखिए इनका बिहेवियर देखिए, प्रभु जस्सी प्रभु जस्सी। क्यों? श्रवण तो करते हैं, उसके आगे का जीरो। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इस कान से सुनो इस कान से बाहर। श्रवणम, आगे क्या कहा गया, कीर्तन। इतना तो करो, श्रवण करो उस चीज को, लोगों को भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनकी चर्चाएं करते हैं। एक दूसरे से मिले तो ये नहीं पूछना चाहिए हाउ आर यू, कैसे हैं। ऐसे दशरथ महाराज, जनक महाराज जो सीता जी के पिता हैं, दशरथ महाराज जो रामचंद्र जी के पिता हैं और अब से आज से रामायण के पाठ भी प्रारंभ हो गए हैं, ये नहीं पूछना चाहिए कभी भी किसी को आप कैसे हैं, ये प्रश्न ही गलत है। बताइए कैसे गलत, कि अगर आप पूछेंगे आप कैसे हैं और भौतिक संसार का व्यक्ति बोलेगा मैं अच्छा हूं, और नकली बोलेगा ना मैं अच्छा हूं भगवान की कृपा है मैं अच्छा हूं, वो झूठ बोल रहा है। दुखालयम संसार में तो अच्छा कैसे हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है? दुखालयम संसार में सिर्फ दुखी तो दुख है, तो उसमें अच्छा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ही इज अ चीटर, झूठ बोल रहा है। और जो एक भक्त है वो बोलता है कि है ना प्रभु जी मैं जो हूं दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, तो वो भी झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर वो परेशान है तो वो भक्त नहीं है, और अगर वो भक्त है तो वो परेशान नहीं हो सकता। कई भक्त आते हैं ना प्रभु जी मैं ना सेवाओं से इतना परेशान हूं, टेंपल मैनेजमेंट, मंदिर के अंदर इतना, इधर ये करो वो करो, वो भक्त उसके लिए ये बोलता है वो ये बोलता है, प्रभु जी क्या करूं मैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है प्रभु जी और प्रभु जी हमारी भक्ति तो मतलब बिगड़ जाए, अरे प्रभु जी बिगड़ेगी नहीं, शुरू ही नहीं हुई है आपकी, बिगड़ेगी तो तब जो शुरू। भक्त कभी परेशान नहीं होता क्योंकि भक्त जानता है ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंदा विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, हर कारण के कारण गोविंद। तो फिर क्यों, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसका कारण कौन है? गोविंद चाहते हैं। जिस दिन आपने पहले दिन हरे कृष्ण जपना शुरू किया, भगवान ने आपके प्रकृति के तीनों डोरों को काट दिया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, कृष्ण ने कहा अब मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अब भगवान जब ख्याल रखते हैं और देखते हैं कि तेरे पूरे शरीर पर दंभ दर्प क्रोध इसके फोड़े हैं छाले हैं, तो क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे के शरीर पे फोड़े हों छाले हों तो क्या करोगे आप, ऐसे ही रहने दोगे या उसका ट्रीटमेंट करोगे? हाँ जी, तो भगवान भी वही करते हैं, फोड़ते हैं, और जब फूटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन उसके पीछे का कारण सफाई होती है, सफाई स्वच्छता शुद्धिकरण। ये किसके द्वारा होता है? अब फोड़ा खुद तो फोड़ नहीं सकते घर में, किसके द्वारा फूटता है? डॉक्टर के द्वारा। तो डॉक्टर कौन है? दूसरा वैष्णव, वो भी तो वैष्णव है। और आपने बोला वांछा कल्प तरुभस्य कृपा सिंधुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। मुझे भी अपने जैसा बना दो, वांछा को पूर्ण कर दो। कल्प वर्तमान आप इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो, उसने इच्छा पूर्ण कर दी, दोड़ी गाली दे दी आपको। आपने जैसा बनाना चाह रहा है, आपको वैष्णव प्योर करना चाह रहा है, तो आप कहते हो अच्छा इतने बड़े वैष्णव बनते हैं, बोलने का तरीका देखा है इनका, क्यों? वो तो आपका शुद्धिकरण कर रहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी तक हम भागवत को श्रवण कर रहे हैं बस, न उसका कीर्तन किया, न मनन किया, न चिंतन किया, न कंटेम्पलेशन किया, न एसिमिलेशन किया, एप्लीकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में अप्लाई किया, इसको उतार लिया और उसके बाद वो शरीर त्याग के भगवत धाम चले गए, ऐसे लोगों को कहते हैं भागवत देहा आचार्य। जिनकी समाधि पर जाकर हम दंडवत करते हैं, लंबा लंबा खींच खींच के दंडवत मारते हैं, ये भागवत देह है। जिनकी शरीर सच्चिदानंद विग्रह बन गई, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है और उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार का जो आवरण था उसको नष्ट कर दिया। मन बुद्धि अहंकार नष्ट हो जाने से सच्चिदानंद आत्मा पूर्ण पंच भौतिक शरीर के साथ मिक्स हो गई, तो जैसी आत्मा थी पूरा शरीर भी दिव्य बन गया। उनको कहते हैं इनका शरीर बड़ा दिव्य है। और उनको जब समाधिस्थ किया जाता है तो वहां लोग प्रणाम करते हैं क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, वो भागवत देह है। अब कुछ लोग हैं जो शरीर के अंदर हैं लेकिन उनके अंदर अभी भगवान के घर नहीं गए, गोलोक धाम नहीं गए, लेकिन उनके अंदर काम वासना रंच मात्र भी नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे सामने सैकड़ों नग्न अवस्था में स्त्रियां भी ले आओगे लेकिन मेरी काम वासना नहीं आएगी। ये चैलेंज किया प्रभुपाद जी, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद निर्धूत काषाय रूप में अपने को अवस्थित कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं होता है कि ये ना प्रभु यार ये ना ये सब चीजें मत दिखाओ, मेरा ना मन बहक जाता है, ये मत दिखाओ यार। ये जो मन बहकने वाली स्थिति है ये भी भक्त की स्थिति नहीं है। इसीलिए जब तक उस स्थिति पे ना पहुंच जाओ निर्धूत काषाय अवॉइड, तो लोग बोलते हैं स्कॉन वाले ये सब बंद कर देते हैं। ये बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ में है, आगे जाने के बाद में, जैसे अखबार नहीं पढ़ना तो शुरुआत में अखबार पढ़ने को मना किया जाएगा, टीवी देखने को मना किया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सन्यासी है वो अखबार पढ़ रहा है। आप कहेंगे हो खुद तो अखबार पढ़ते, हमें मना करते हैं, क्योंकि वो निर्धूत काषाय, अब उसको चित्र देख करके चिंतन नहीं होता। स्त्री का चित्र देख के ले गए, देखो बेटी कैसे घूम रही है बिना वस्त्रों के, आपको आएगा बेटी? तो इस प्रकार से जब तक ऐसा चिंतन ना आए हमें वो चित्र को दूर, इसलिए उस अवस्था तक जाने की प्रक्रिया को किसी भागवत भक्त के नीचे ही रह के सीखना पड़ेगा। निर्धूत काषाय, जिनकी काम वासना समाप्त हो चुकी है परंतु भौतिक देह के अंदर विराजमान है। और एक होते हैं मूर्छित काषाय, काम वासना तो है लेकिन सुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था, थोड़ा सा इग्नाइट किया जलने लग जाएगी वापस। तो ऐसे लोगों को इन सब चीजों से दूर हम देखते हैं। कई कई सन्यासी प्रभुपाद जी के मूवमेंट में भी ऐसा हुआ जिनको पतन हो गया, फॉल डाउन हो गया, तो उन सन्यासी को हम क्या नीची अवस्था में देखें, ओहो तो गिर गए? नहीं, उत्तम भागवत नहीं है, मध्यम भागवत नहीं है, लेकिन भागवत तो है, कनिष्ठ भागवत है। भागवत के उत्तम भक्तों में भी, उत्तम में भी तीन कैटेगरी ना, उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम, उत्तम कनिष्ठ। उत्तम भक्ति के भी कनिष्ठ स्तर पे हैं क्योंकि उनकी जो काम वासना थी वो मूर्छित अवस्था में थी, उन्हें मूर्छित काषाय भागवत कहते हैं। समझ रहे? कंफ्यूजन तो नहीं होना, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है, सरल भाषा है बस। तो मूर्छित काषाय अवस्था में, तो इस प्रकार से अगर हमें सीखना है तो अवधूत काषाय, निर्धूत काषाय, ऐसे किसी भक्त की शरण ग्रहण करें जिसने काम वासनाओं को जीत लिया है। और अगर जीत लिया, प्रभुपाद कहते थे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में काम वासना को जीत लिया वो पूरे विश्व को जीत सकता है। लोग बोलते हैं कि इस्कॉन के लोग ना बड़े चमकते हैं, चेहरा चमकता है, तो पूछते हैं मेरे से एक दिन, आप लोग कौन से ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवाते हैं, कौन से ब्यूटी पार्लर में करा? सारे भक्त सुंदर सुंदर चेहरे है ना, एक जैसा रूप, एक जैसे हेड शेव, एक जैसा तिलक, सुंदर दिखते हैं सब, गोरे गोरे से सब एक जैसे। कैसे ऐसा हो जाता है कि आप सब एक जैसे दिखते हैं, कौन से ब्यूटी पार्लर में जाते हैं? तो हम, मैंने कहा कि हम जिस ब्यूटी पार्लर में जाते हैं उसको कहते हैं गोलोक धाम ब्यूटी पार्लर, और वहां पर जो फेशियल है उस फेशियल का नाम है अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है भागवत की महिमा। तो ग्रंथ की महिमा, भक्त की महिमा, अब आएंगे श्लोक की महिमा फिर चर्चा। तो यहां पर दिया गया है आज का श्लोक, कार्य कारणम कृतत्वे, कार्य मतलब शरीर और कारण इंद्रियां। बहुत मुख्य है इसको समझना कि इंद्रियां से शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संगवस्यो सद असद योनि जन्मसु, इंद्रियों के कारण ही हमारी योनियां प्राप्त हो रही है। तो कारण क्या है? इंद्रियां। अब देखिए बड़ा अच्छा है, आदमी कहता है कि कार्य क्या है? शरीर, क्योंकि शरीर से हम कार्य करते हैं। इसी में सारा उत्तर छुपा हुआ, कार्य कारण। कार्य मतलब बॉडी, हमें क्यों कार्य करने के लिए शरीर मिल रहा है? कारण क्या है? कारण संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी कारण होता है। कारण संस्कृत शब्द का अनुवाद प्रभुपाद लिख रहे हैं इंद्रियां। इंद्रियों के कारण शरीर मिल रहा है। अब जिस व्यक्ति की इंद्रियां इस संसार में लगी हैं उसको शरीर मिलेगा। कारणम गुण संग अस्य, जैसे गुणों का संग करेंगे, सद असद योनि जन्मसु, उसको अच्छी या बुरी योनि मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर उसने भक्तों का संग किया तो उसको दिव्य योनि, दिव्य शरीर प्राप्त होता है। और इसमें समझने की बात है एक इंपॉर्टेंट, यहां पर कहा गया पुरुषम प्रकृते परम, नीचे आखिरी में लिखा पुरुषम प्रकृते परम। तो पुरुषम में प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा आत्मा, पुरुषम आत्मा, लेकिन पुरुषम होता कौन है? भोक्ता कृष्ण, और आत्मा लिख दिया तो परमात्मा लिखना चाहिए था, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन गलत हो गया है ना। फिर पुरुषम प्रकृते परम, पुरुषम इज आत्मा, पर होना तो परमात्मा चाहिए था, प्रकृति में आत्मा आना चाहिए था। प्रभुपाद ने प्रकृति में लिखा प्रकृति और पुरुषम में लिखा आत्मा, तो रॉन्ग ट्रांसलेशन। हाँ जी, परम पुरुषम प्रकृते परम, पर पुरुषम में आत्मा लिखा है, आत्मा नहीं है ना पुरुष। तो आत्मा तो क्या है? भोग्या है, स्त्री है, प्रकृति है, पुरुष थोड़ी है। कंफ्यूजिंग है। तो इस बात को श्रील प्रभुपाद जी अपने ही प्रवचन के दौरान समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा कहा प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये श्लोक है पुरुषम, इसको कैसे हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक भोक्ता है भगवान, भोक्ता राम यज्ञ तप साम सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर है कृष्ण, भोक्ता राम यज्ञ, सारे यज्ञों के भोगने वाले, और हम कौन है? प्रकृति भोग्या। स्त्री और पुरुष जब विवाह होता है तो पुरुष भोक्ता है और स्त्री भोग्या है। लेकिन आजकल हम देखते हैं स्त्री झंडे लेकर निकलती हैं, स्त्री पुरुष बराबर है, विमेन पार्टी बराबर, विमेन पार्टी बराबर। प्रभुपाद जी के समय भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे आंदोलन करते थे, हम सब बराबर हैं, स्त्री पुरुष बराबर है। आपको भी मिलते होंगे ऐसे, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आपके घर में भी बोलते होंगे स्त्री पुरुष बराबर, लेकिन है कि नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं? प्रभु जी क्या बोलते हैं आप लोग? प्रभु जी क्या कहते हैं, बराबर? आप क्या बोलते हैं? नहीं, क्या है? स्त्री ऊपर है? जैसे एक बार एक स्त्री ने जाकर के बोला मंदिर में, कहती प्रभु जी मेरे जो प्रभु जी है ना यहां मंदिर में तो ऐसे रहते चूहे के जैसे, हरे कृष्णा प्रभु जी, और घर जाके शेर बन जाते हैं, ये काम नहीं करती हो, वो काम नहीं करती हो, यहां चूहे घर में शेर। तो काउंसलर ने बुलाया, बोला क्यों प्रभु जी, आप मंदिर में चूहे घर में शेर बन जाते हो? तो कहता है प्रभु जी मैं तो शेर बनता हूं, ये तो शेरा वाली बन जाती है। तो सोचो, अलग बिहेवियर मंदिर में, अलग वहां अलग। तो उस प्रकार की हम भावना की बात नहीं कर रहे। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हमारे जमाने में विवाह होते थे बंगाल में, तो उस समय कहा जाता था कि मैं एक दासी से विवाह करने जा रहा हूं, और लोग भी पूछते थे बंगला भाषा में, दासी को कब ला रहे हो? बहू को दासी बोलते, दासी मतलब जो सास ससुर और पति की सेवा करेगी। और उसका साक्षात उदाहरण लक्ष्मी जी है। कहां रहती है लक्ष्मी जी? भगवान के चरण में, चरण दबाती है, फोटो देखा है ना, वक्षस्थल पे तो रहती हैं लेकिन चरण पे रहती है, चरण दबाती है हमेशा, सेवा उनकी। जब चरण दबाती है तो भगवान कहते हैं मैं तुझे सीने से लगाऊंगा, तब वक्षस्थल पे आती है। यहां पर पत्नी सीने से तो लगना चाहती है लेकिन वक्षस्थल से उतर के सेवा नहीं करना चाहती, करना चाहती बराबरी का स्टेटस। कहीं भी लेक्चर देने जाओ और इस टॉपिक पे चर्चा कर दो, मैंने तो हमेशा देखा है पिटाई करने को आ जाती है माता है, इतनी सारी इकट्ठी होकर के, प्रभु जी आपने कैसे बोल दिया कि हम बराबर नहीं है, हमें क्या कमी है। मैंने कहा हमने ये थोड़ी का कमी है, आप में तो बहुत खूबी है, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं पुरुष नहीं कर सकते, आप में तो खूबी है, हमने ये कब कहा कमी है। लेकिन अगर आप में खूबी है तो आप मेट्रो ट्रेन के अंदर अलग से दो सीट क्यों मांगती हो, बराबर हो ना। दो सीट तो हैंडीकैप्ड को दी जाती है, और हैंडीकैप्ड मतलब वीकर, कमजोर। अगर आप कमजोर हो तो कमजोर मान करके सेवा करो, या तो पुत्र के ऊपर निर्भर रहो, या पिता पे निर्भर रहो, या पति पे निर्भर रहो। निर्भरता स्त्री का लक्षण है। पुरुष ब्रह्मचारी बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, परंतु स्त्री को पुरुष की तरह से कॉपी करके सन्यासी बनने की कोई इजाजत शास्त्रों में नहीं है। इसका मतलब स्त्री को दबा के रखना चाहिए, स्त्री को पूरा मार पीट के रखना चाहिए, स्त्री को दबा देना चाहिए पूरा? नहीं। शास्त्रों का उल्लेख है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसीलिए भगवान ने भी तीन डिपार्टमेंट नारियों को दे दिए, एजुकेशन सरस्वती मैया को दे दिया, धन का डिपार्टमेंट लक्ष्मी मैया को दे दिया, शक्ति का डिपार्टमेंट दुर्गा मैया को दे दिया, ताकि आकर के बाद में ये ना कहें हमको कुछ दिया नहीं, हमको भी दिया, हेड बना दिया। तो इस तरह से स्त्री को दबाना का मतलब दबाना नहीं है, एक स्थिति बताना है। क्या कि स्थिति ये है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम निर्भर हो। और मनु संहिता का श्लोक है, उसमें कहा गया है न स्त्री स्वतंत्र हम अर्हति। मनु संहिता में मनु महाराज मनुष्यों की प्रजाति जहां से प्रारंभ होती कहते हैं न स्त्री स्वतंत्रम अर्यति, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इसी प्रकार से स्त्री कौन है? हम आत्मा। तो इस प्रकार से आत्मा को भी स्वतंत्रता नहीं दी गई। लेकिन आत्मा अगर स्वतंत्रता का दावा करती है स्त्री की तरह, तो जैसा हाल स्त्री का होता है दुख, ऐसे ही आत्मा को भी दुख भोगना पड़ता। तो यहां पर लोग बोलते हैं भगवान क्या चाहते हैं, हम भगवान की झाड़ू लगाएं, हम भगवान के नौकर बन जाएं, यही चाहते हैं भगवान, मतलब वो मालिक बन के बैठे हम नौकर बन जाएं, ये चाहते हैं भगवान? भगवान ये नहीं चाहते हैं। फिर दास 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 का मतलब क्या? भगवान कहना चाहते हैं दास का मतलब है किस प्रकार से पति की सेवा जब पत्नी करती है तो पति उसको छाती से लगाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसी प्रकार से जब एक प्रकृति, एक आत्मा परमात्मा की सेवा करती है तो कृष्ण भी उस व्यक्ति को, उस आत्मा को छाती से लगाते हैं। प्रहलाद महाराज को छाती से लगाया कि नहीं लगाया? लगाते हैं भगवान। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए दासत्व, गोपीर भरते और पद कमले और दास 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 अनुदास, शुरुआत में तो यह भावना रहती है, परंतु समय काल निकलते निकलते क्या हो जाता है? बॉस 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 अनु, और बॉस से बास आती है, बास। तो बास नहीं बनना है, दास बनना है। दास प्रकृति बनते ही, क्योंकि न स्त्री स्वतंत्रम अर्हति, जिस प्रकार स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है आत्मा को भी स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए यहां पर श्लोक में लिखा गया पुरुषम प्रकृते परम, कहा गया है भोक्तृत्वे सुख दुखानाम। जब तक ये स्वतंत्रता की अभिलाषा करेगी तब तक सुख और दुख आते जाते रहेंगे, परंतु जैसे ही भगवान की शरण में चली जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये आत्मा पुरुषम परम, परम भगवान की तरह से ये उनकी सेवा में हो जाएगी। तो ये जो उसकी भावना है पुरुषम बनने की, उस भावना को व्यक्त करता है ये श्लोक। प्रकृति पुरुष बनने की दौड़ में लगी है, प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए यहां पर आत्मा अनुवाद में लिखा गया है। पुरुषम बनना चाह रही है, पर है क्या? प्रकृति। जैसे एक बार एक घर में नया नया विवाह हुआ था, कई लोगों का हुआ है, सफेद वालों का सभी का हुआ है, पीले वाले तो पता नहीं करेंगे नहीं, और ऑरेंज वाले तो निश्चित किए नहीं करेंगे। तो जब नया नया विवाह हुआ तो विवाह करने के बाद में बहू रानी सो रही थी कमरे में और बाहर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मां ने देखा 8 बज गए हैं, सूर्यदेव निकल आए हैं, परंतु बहू रानी सो रही है और बेटा झाड़ू लगा रहा है घर में। तो मां ने कहा, बेटा ये सब नहीं चलेगा, तुम मत लगाओ, बहुत दुख लग रहा है, तुमने प्रेम विवाह किया है, लव मैरिज, और ये नहीं चलेगा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, कंपनी में तो सीईओ है, वहां तेरी सब सुनते हैं, यहाँ तो झाड़ू लगाएगा, ला दे मैं लगाती हूँ। वो कह रहा ना माँ मैं, बेटा कह रहा ना मैं, माँ मैं, बेटा मैं, माँ माँ, दोनों का चल रहा था। बहुत जोर का शोर हुआ, बहू रानी उठकर आई, दरवाजा खोला, कहते क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने सुबह सुबह। तो देखा कि वो कह रहा मैं। बहू रानी कहती लड़ाई की क्या बात है? कहा बेटा आप सो रही थी तो हमने सोचा झाड़ू मैं लगाऊं, तो ये कह रहा है मैं लगाऊंगा, तो यही है। कहा कोई बात नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं है, एक दिन आप लगा लेना, एक दिन आप लगा लेना। ये इस प्रकार की जब तक प्रकृति की भावना रहेगी, स्त्री की भावना जिस प्रकार है, ऐसी आत्मा की भावना जब तक रहेगी, स्वतंत्र आनंद की भावना, कभी भी आनंद आने वाला नहीं है। क्या आने वाला है? सुख दुखानाम। कभी कभी सुख लगेगा, कभी कभी दुख लगेगा, सुख दुखानाम। इसलिए हमें समझना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने जीव भूत महाबाहु ये एकदम धार्यतम जगत, मैंने अपने अंश से इस जगत को धारण कर रखा है। भगवत गीता 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैंने अपने अंश से इस जगत को धारण कर रखा है और तुम भी मेरा अंश हो, और तुमने क्या कर रखा है? मैंने अपने एक अंश से इस जगत को धारण कर रखा है और तुमने क्या कर रखा है? एक अंश को बर्बाद कर रखा है। जिस प्रकार से अग्नि का एक तिनका घास फूस को जला के राख कर सकता है, ऐसे ही भगवान का एक अंश इस ब्रह्मांड को धारण कर सकता है, ऐसे ही हम भगवान के एक अंश मात्र आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा, क्या कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जब तक उसको रियलाइज कराने वाला कोई नहीं होगा, सुप्त अवस्था में सो रहे हैं खर्राटे मार के, खाओ पराठे मारो खर्राटे, है ना। तो फिर उस अवस्था में, अगर सुप्त अवस्था में कोई व्यक्ति रहेगा तो सीखने वाला नहीं है कोई व्यक्ति, तो वह भगवान के समान हो सकता है। ऐसी भावना बुद्धिहीन की भावना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं 7वें अध्याय भगवत गीता के 5वें श्लोक में, कि अगर वो ये सोचता है कि मैं भगवान के समान बन जाऊंगा, ये उसका बुद्धिहीन विचार है। लोग बोलते हैं नर ही नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर की सेवा करो नारायण की सेवा हो जाती है, तो ये सही है या गलत है? नर कैसे नारायण हो जाएगा? नारायण ने जब कृष्ण रूप में भगवान आ रहे हैं तो क्या उठा रहे हैं? गिरी गोवर्धन। और नर जो है वो बेचारा पत्नी का बोझ ही नहीं सहन कर पा रहा, गोवर्धन का तो बोझ दूर की बात है, तो फिर वो कैसे नर नारायण हो सकता है? तो ये बिल्कुल ही गलत फिलॉसफी है। इसमें एक और फिलॉसफी लोग लगाते थे, दरिद्र नारायण। तो प्रभुपाद बोलते थे नारायण को दरिद्र बना दिया, जो लक्ष्मीपति है उसको दरिद्र बना दिया, गरीब भिखारी बना दिया। अगर नारायण दरिद्र है तो अमीरों में नारायण नहीं है, नारायण तो सब में वास करता है ना, भगवान तो सबके अंदर वास करते हैं। लेकिन समझने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। वो कैसे आएगी? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि कब दूंगा? जब कोई मेरा सतत भजन करता है, भगवान का भजन करने में जिसकी अभिलाषा है, जो इस प्रकृति की भावना से अलग है। चाहे हम धोती कुर्ते में हो, हमें लगता है ये सारी बातें तो बाहर वालों के लिए हैं, लेकिन माफी चाहूंगा कि ये सारी बातें हमारे लिए हैं। और खासकर जितना जितना दिन व्यक्ति पुराना होता है, जितना जितना सन्यास का डंडा उसके पास आएगा, उतना उतना अधिक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितना जितना वो प्रेसिडेंट की पोजिशन पर जाएगा, उतना उतना अधिक ये भागवत की महिमा हमारे लिए जरूरी है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए मुझे तो 15 साल हो गए, दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए वर्ड्स नहीं है, ये उनके लिए है जो संडे लव फीस में आते हैं, नए नए लोग, तो उनके लिए, मेरे लिए नहीं। जिसने ये सोच लिया, इसका मतलब वो सच मायने में पुरुष बनने का प्रयास कर। हम संसार में आए क्यों? क्योंकि हम भगवान से बराबरी चाहते थे, भगवान के बराबर होना चाहते थे। इच्छा द्वेष समुत्तेना, इच्छा थी आनंद, एंजॉय मेंटेलिटी, और दूसरा भगवान तुम अकेले आनंद में रहोगे, हम भी तो आनंद लेना चाहते तुम्हारे, द्वेष, और वो नीचे आए। आज भी वही अपनी इच्छा है, कब मैं करूंगा अपना प्रोग्राम्स, कब मैं करूंगा कीर्तन, कब मैं करूंगा मैं चल रहा है तो अभी भी इच्छा है। और फिर जो दूसरा कर लेता है, ओह बड़ा व्यक्ति अपने आप को बना, मेरे सामने आया था ये, दो लेक्चर क्या दे दिया, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, ये क्या है? द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इस संसार में आने का जो कारण था उसको हमने मेंटेन किया है, वो कारण अभी तक डिमिनिश नहीं हुआ, मेंटेनेंस। अब अगर ये मेंटेनेंस में चलेगा तो क्या लगता है कभी वापस जाएंगे गोलोक धाम? कितना भी कर लो, अरे रगड़ रगड़ के मालाएं टूट जाएंगी, परंतु इसकी सुकृति अर्जित होगी। भगवत धाम के दरवाजे बंद है, भगवत धाम का दरवाजा खुलता है उसके लिए जो व्यक्ति प्रेमी भक्त है। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भजन करता। ऐसा नहीं है, भगवान ने यह नहीं कहा कि 16 माला जप करेगा वो मेरे धाम को आएगा, ऐसा कहीं बोला? गीता में श्लोक, भागवत में श्लोक। 16 माला प्रभुपाद ने इसलिए दी कि 16 माला कम से कम बैठ के करेंगे तो मन जो इधर उधर भाग रहा है भगवान के नाम में लगेगा, और फिर उसकी क्वालिटी बढ़ाते बढ़ाते एक दिन चिंतन करते करते हमें भगवान के नाम में प्रेम आएगा। टारगेट है, हमने तो सोच लिया, अरे कहाँ भागना भाई साहब, राजधानी छूट रही है आपकी। अगर नहीं है टाइम, 2 माला बाद में कर लेना जब टाइम हो, 7:15 बजने वाले दर्शनार्थी खुले, अरे कहाँ जाना भाई साहब, प्रीतिपूर्वकम कहाँ चला गया? कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाए, कृष्ण कहेंगे एक दिए उसका तो तूने बुरा हाल कर रखा है, दूसरे दूंगा उसका क्या कर देगा। और एक होते हैं भक्त हनुमान के जैसे भक्त, हनुमान जी जो भक्त थे, जब भगवान राम, मुझे इसलिए प्रसंग याद आया क्योंकि आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, आपको राम कथा करने आना है, आपको राम कथा करने आना है, आपको यहाँ आना यहाँ आना, तो वो भी घूम रहा था, इसलिए मुझे हनुमान का एक प्रसंग याद आ गया कि भगवान के भक्त किस स्टेज का होना चाहिए। व्यक्ति का भगवान का भक्त एक ऐसा भक्त है जिसके लिए भगवान चिंतन करते हैं। हम रोज सुबह उठ के किसका चिंतन करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र में किसका करते हैं, किसका चिंतन करते हैं? बोलते नहीं आप लोग, डेफ एंड डम क्लास, किसका चिंतन करते हैं? हाँ किसका? किसका? कृष्ण का ना, कोई और बदल लिया भगवान आप लोगों ने, कृष्ण है इस्कॉन में, तो कृष्ण कृष्ण भगवान का हम चिंतन करते हैं कि हमें भगवान अपनी सेवा, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, आप हमको अपनी सेवा में लगाइए, ऐसे तो हम चिंतन करते हैं। तो भगवान किसका चिंतन करते हैं? भगवान के भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर जो 90 अध्याय हैं, उन लीलाओं में एक लीला है भगवान कृष्ण की दिनचर्या, कृष्णा बुक में भी दिया गया। तो उस दिनचर्या का प्रारंभ कैसे होता है? भगवान सबसे पहले उठते हैं, सब स्त्रियों का परित्याग कर देते हैं, 16108 रूपों को विस्तार को छोड़ करके उठ जाते हैं, और उठने के बाद में सबसे पहले उठकर स्नान आदि करके ध्यान में बैठते हैं। किसके ध्यान में बैठते हैं? भगवान ध्यान में बैठते हैं कि इस्कॉन रोहिणी में कौन कौन से भक्त ध्यान से जप कर रहे मेरे नाम का। जैसे आप जप कर रहे हो हरे कृष्णा हरे, कोई आपको बुलाए हरि बोल प्रशांत मुकुंद प्रभु, तो आपका ध्यान जाएगा कि नहीं उसकी तरफ, चाहे आप कितने ध्यान से जप कर रहे हो। अब आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो कृष्ण की तरफ आपका ध्यान है, तो कृष्ण का ध्यान किसकी तरफ होगा? अभिन्नत नाम नामी ना, नाम और नामी में कोई भेद नहीं, तो कृष्ण तो आपकी तरफ ध्यान। तो भगवान जब बैठते तो ये देख रहे होते हैं कौन कौन मेरा ध्यान कर रहा है। अब देखते हैं हरे कृष्ण अरे अरे ये ध्यान कर रहा है, तो भगवान का भी ध्यान वहां से हट जाएगा। लेकिन हनुमान एक ऐसे भक्त है, ऐसे भक्त है जो सदा भगवान का ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करते थे, एकदम चिंतन मनन करते थे। जब अयोध्या वापिस आए रावण वध करिला, रावण का वध करने के बाद जब यात्रा पूर्ण करके सीता मैया को लेकर लक्ष्मण आदि के साथ में वापिस आए, तो आकर के सभी भरत महाराज सबने बोला, हनुमान आप महान हैं, आपने इतनी अधिक सेवा करी है भगवान की, तो अब हम चाहते हैं कि अब आपकी सेवाएं आपसे ले ली जाए। बहुत सेवा की आपने रात दिन, जब से आपको अरण्य वन से मिले तब से आप लेकर के युद्ध कांड के अंत तक, जब तक अयोध्या वापसी में आया हनुमान, तब तक आप भगवान की रात दिन सेवा किए सोए नहीं, लक्ष्मण और हनुमान। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो हनुमान आपकी सेवा हम ले लेते, थोड़ी भरत करेंगे, थोड़ी शत्रुघ्न करेंगे, बाकी भक्त करेंगे अयोध्या के, आप रेस्ट कर लो। हनुमान बोले, ऐसे थोड़ी, भक्त की चिंता है सेवा, क्योंकि वो पुरुष नहीं बनना चाह रहा, वो प्रकृति बनना चाह रहा है, भोगता नहीं बनना चाह रहा, भोग्या बनना चाह रहा है, वो चाहता है मेरी सेवा मुझे मिले, कृष्ण की सेवा। हम उल्टे हैं, सेवा मिलती है तो टेंशन आती है, प्रभु जी पता है आपको कितनी टेंशन है, तीन तीन सेवाएं दे रखी है मेरे को, तीन तीन सेवाएं, अरे आपको खुश होना चाहिए। वो खाली घूम रहा है देखो मजे से, तो वो खाली घूम रहा है, वो उसको भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जिसमें अधिक सेवा है भगवान ने उसे अधिक स्नेह से अधिक सेवा स्वीकार प्रदान किए। और आप जानते सर्व कारण कारणम कृष्ण है, इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। या तो ये बोल दो कि कृष्ण को मालूम कुछ नहीं है, लकड़ी बिठा रखी है खामा खा की, सेवा देने वाले तो टेम्पल मैनेजर मैस प्रेसिडेंट अथॉरिटी है, उनकी इच्छा से हो रहा है। अगर उनकी इच्छा से हो रहा है तो मजा लेना चाहिए, वाह सोने भी नहीं मिलता, वाह वाह कृष्ण वाह क्या सेवा में लगा रखा है, वाह ऐसा आनंद आना चाहिए, है कि नहीं। तो हनुमान को चिंता थी मेरी सेवा छिन गई, ये तो बहुत दुख की बात है। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ सेवा तो दो, तो सबने मीटिंग बुलाई और कहा कि एक सेवा देते हैं, कि आपकी बड़ी सरल सेवा है, आपको चुटकी बजानी है। बोले चुटकी बजानी है मतलब? बोले जब भगवान राम सोने जाते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है ना, तो हम करते ऐसे करते हैं ना, तो आप जब भगवान उबासी ले तो आपको भगवान को थकाना नहीं कि उनके हाथ यहां तक आए और फिर वो ऐसे करे, आपको तुरंत ऐसे बैठ कर देखना है भगवान को, और जैसे ही भगवान करे तुरंत चुटकियां बजानी उनके आगे। घाट बहुत अच्छी सेवा, बहुत। अभी अपनी सेवा करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जैसे क्रिकेट मैच वाले करते हैं कि क्रिकेट खेलने के पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं कि, तो नेट प्रैक्टिस करने के लिए वैसे ही भक्त को करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अंत में राम या कृष्ण का दर्शन होगा कि नहीं होगा, अंते नारायण स्मृति होगी कि नहीं होगी, उसके लिए पूरा जीवन भगवान के नाम का जप कीर्तन मनन चिंतन चलता रहना चाहिए। इसीलिए ये प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम सारे बनाए गए। तो हनुमान प्रैक्टिस करने बैठ गए, उदास तो थे कि एक सेवा मिली है, कहा लेकिन इसकी प्रैक्टिस करूंगा, कहीं ऐसा ना हो भगवान राम हा करे और आवाज ही ना निकले चुटकी में, तो प्रैक्टिस करने बैठ गए, ऐसे बजाने की प्रैक्टिस कर रहा है। अब भगवान जो है वो तो भक्त के एक एक्शन पर रिएक्ट करते हैं, आपको नहीं दिखता कि भगवान रिएक्ट कर रहे, आपको लगता है वो पाषाण मूर्ति है ये क्या। तभी तो कोई, अगर पब्लिक बहुत ज्यादा नहीं होती तो उत्साह कम होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बहुत सारी भीड़ हो जाती है जन्माष्टमी समारोह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उत्साह भीड़ का है कि कृष्ण का है, कृष्ण का। तो अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर लाइफ सही है, लेकिन अभी हम उल्टा चल रहे, इधर को देखते हैं उसको नहीं देखते, उसको देखने लगेंगे इधर को देखना। संसार से करो व्यवहार, कृष्ण से करो प्यार, हम करते उल्टा, कृष्ण से करते हैं व्यवहार, संसार से करते हैं प्यार। तो हनुमान जोर जोर से चुटकी बजाने लगे, भगवान राम को उबासी आने लगी, उल्टा रिएक्शन चालू हो गया, उबासी पे चुटकी बजानी थी, यहां चुटकी पे उबासी बजने लगी, और चुटकी बजा रहे बैठकर भगवान सब बोले क्या बीमारी हो गई, बोले जब से आप रावण का वध करके आए हैं प्रभु, अयोध्या से पहले जाने से पहले तो आप ऐसे नहीं थे, लगता है जंगल के रास्ते में किसी बैक्टीरिया ने काट लिया है आपको, है? कोई एंटीवायरस लगवाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक, जिससे आपका ये बीमारी दूर हो, क्योंकि आप ये करे जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान करे जा रहे हैं अपनी सेवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भगवान भक्त का चिंतन करने में रिएक्ट किए जा रहे हैं। तो भगवान कितना तत्पर रहते हैं, भक्त करे और भगवान उससे पाए। प्रभुपाद जी कहते थे आप एक कदम चलेंगे कृष्ण की ओर, कृष्ण 10 कदम चलेंगे आपकी ओर। तो कृष्ण चलते क्यों नहीं? क्योंकि आप एक कदम चलते नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप भगवान की ओर एक कदम चले। तो वो जोर जोर से चुटकी बजाने लगे, भगवान उबासीने लगे, सारे के सारे बोले क्या हो गया, कैसे हो गया, ये क्या है, ये क्या सिस्टम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। दान दक्षिणा दो, लगता है कोई बीमारी। तो सबने बहुत सारा अयोध्या का दान दिया, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, अपने अपने खजाने कोष खोल दिए, वैद्य बुलाए गए, दवाइयां औषधियां देने लग गए। भगवान राम कर जा रहे, भगवान बोले अरे तुम लोगों के बस का कुछ नहीं है, मेरे भक्त हनुमान को बुलाओ। जब मैं गया था वन में तो सीता का पता लगाने के लिए भी सभी लोग उतनी तत्परता से सेवा नहीं कर पाए जितनी तत्परता से हनुमान ने मेरी सेवा करी। जाओ हनुमान को ढूंढो, कहाँ है हनुमान को ढूंढा गया। कहा अरे तुम यहां बैठे चुटकियां बजा रहे हो, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। बोला ठीक है चलो। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा हनुमान ये देखो मुझे उबासियां आ रही हैं। बोला अच्छा भगवान, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। क्या भगवान? जैसे उन्होंने रोका, भगवान का रोका बंद हो गई उबासी। भगवान बोले हनुमान तुम्हारे आती उबासी बंद हो गई? तो सच में भगवान मेरी तो सेवा थी कि जब आपको उबासी आए तो चुटकी बजानी है। जैसे चुटकी बजे भगवान फिर भगवान रिएक्ट कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे मतलब ये चुटकी बजती है इधर मुंह खुलता है। अरे वाह क्या कनेक्शन है दोनों का, प्रेम। इस प्रकार का अधिक प्रेम भगवान का भक्त से होता है। वो कब होगा? जब आप भोग्या बनने का प्रयास करें। वही पत्नी से पति प्रेम करता है जो पत्नी पति के आने का इंतजार करती है कि कब आएंगे, उनके लिए क्या भोजन बनाऊं, कैसे उनको प्रसन्न करूं, इंतजार करती कब आएंगे आप, कब आएंगे आप, कब आएंगे आप। वो नहीं, एक आदमी था, उसने बोला कि भैया जल्दी घर जाने दो, ऑफिस की मीटिंग पूरी करो। तो उन्होंने कहा क्यों जल्दी घर क्यों जाना? कहा जल्दी घर इसलिए जाना है क्योंकि ना मेरी पत्नी तब तक खाना नहीं खाती जब तक मैं खाना नहीं खाता। कहा बड़ी है यार कलयुग में ऐसी पत्नी, मतलब यार राम राज्य आ गया क्या? वो 24वें चतुर्युगी के अंदर, त्रेता युग में श्री राम आए थे, 28वीं चतुर्युगी के कलयुग के अंदर तुम्हें ऐसी पत्नी मिली, कमाल है यार। कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं घर जाता हूं बनाता हूं फिर वो खाती है फिर मैं खाता हूं, तो इसलिए तब तक मैं तो अब कलयुग है। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि ऐसी स्त्री है कलयुग में, अगर कलयुग में ऐसी स्त्री हो जो करे इंतजार जब तक पति ना खाए मैं ना खाऊं, उसी प्रकार से बस इसी संबंध को आप समझ लीजिए। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्चते। वैरागी नहीं बनना है, युक्त वैरागी बनना है, रहना है इसी संसार में परंतु जीना है उसके लिए। जब रात दिन सुबह उठे चिंतन, उन्होंने खाया फिर मैं खाऊंगा। जैसे कोई प्लेट लेके आया बोले पीछे भोग लगाया, कृष्ण ने खाया क्या, कृष्ण ने खाया क्या, नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगा। हम भोग भी इसलिए लगाते हैं कि भगवान ने गीता के 3rd अध्याय के 13वें श्लोक में लिख दिया यज्ञ विशिष्टान अश्नो मुच्यन्ते सर्व कलबिषम भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। तुम भोग लगा के नहीं खाओगे तो पाप खाओगे, मैं पापी नहीं बनना चाहता हूं, अपनी पाप से मुक्त होने के लिए कृष्ण तुम खा लो मुझे मुक्त कर दो, बाकी तुम जानो मैं जानो। इसलिए नहीं कि कृष्ण भूखे होंगे, ये भावना है। भजताम प्रीति पूर्वकम, हर सेवा में जितनी प्रीति आप ऐड करते जाएंगे आप देखेंगे आपके आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद में बुद्धिवर्धन होगा। भक्त कहते हैं ना प्रभु जी इतने साल हो गए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस स्पिरिचुअल लाइफ, मैं संतुष्ट नहीं हूं। वो असंतुष्टि का कारण है, आपने भजन तो किया परंतु प्रीति पूर्वक नहीं किया, कृष्ण के लिए नहीं किया। आपने समाज के लिए किया, संसार के लिए किया, नियम पूर्वक किया परंतु कृष्ण के लिए नहीं किया। और कृष्ण के प्रतिनिधि हैं गुरु, अगर गुरु से प्रेम कर सकते हैं तो कृष्ण से प्रेम हो पाए। गुरु कहते रहते हैं ये करो ये करो ये करो, लेकिन हम गुरु को भी साधारण मनुष्य मानते हैं और उनकी बात को भी नहीं मानते। तो कृष्ण से प्रेम करने से पहले गुरु से प्रेम करो। गुरु से प्रेम हो गया तो उसके बाद कृष्ण से भी प्रेम हो जाएगा। गुरु में बहुत शक्ति है, गुरु में इतनी शक्ति है कि गुरु आपको साक्षात गोविंद आपके हृदय में प्रदान कर सकते हैं। तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम, वैष्णव के हृदय में गोविंद है। जैव धर्म के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं में से, कि एक व्यक्ति को भक्ति महारानी से पूछा गया कि भक्ति महारानी आप रहती कहाँ हो, एक व्यक्ति को जीवन में प्राप्त क्यों नहीं होती उसके इतने अथक प्रयास के बाद भी। भक्ति महारानी कहती है क्योंकि व्यक्ति कृष्ण के अंदर मुझे ढूंढता है कि मैं कृष्ण वृंदावन जाऊंगा तो भक्ति मिलेगी, तीर्थ यात्रा जाऊंगा तो भक्ति मिलेगी। भक्ति महारानी कहती है मैं रहती हूं भक्त के हृदय में, भक्त के हृदय। और अगर भक्ति करनी है तो भक्त को प्रसन्न कर लो। अब इसमें यह नहीं कहा गया सन्यासी को प्रसन्न कर लो भक्त। अब भक्त कौन है, अब इसमें बहुत ऑफेंस होता है, ये भक्त है ये नहीं है। सब भक्त है, जो भगवान का नाम जप कर रहा है सब भक्त है। लेकिन आपको उसकी गलतियां नजर आ रही हैं तो आपको भक्त नजर नहीं आता। अगर नजर आ भी रही हैं तो उनको अनदेखा कर दो, अनदेखा, मैंने देखा ही नहीं इस गलती को, मैंने इस गलती को देखा ही नहीं। प्रभु आप बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी दृष्टि गलत है जो मैं आपको गलत रूप से देख रहा हूं। लाल चश्मा चढ़ाऊंगा तो प्रकृति लाल नजर आएगी, काला चश्मा चढ़ाऊंगा तो प्रकृति काली नजर आएगी, परंतु प्रकृति ना तो हरी है, ना प्रकृति ना तो लाल है ना काली है, प्रकृति तो हरी है, हरे रंग की प्रकृति है। तो हरी क्यों नहीं नजर आती है, क्योंकि कभी मैं लाल चश्मा चढ़ाता हूं कभी काला चश्मा। तो चश्मे की प्रॉब्लम है कि प्रकृति की प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी कहते थे, लोग बोलते हैं ये भौतिक संसार, प्रभुपाद कहते नो, ये भौतिक संसार नहीं है, ये आध्यात्मिक संसार है। क्यों आध्यात्मिक, कैसे आध्यात्मिक, ऐसे है कृष्ण भावना भवित होने का मतलब है हर वस्तु में कृष्ण को देख पाना। प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से भगवान आए, आए थे कि नहीं आए, तो आपके लिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, कितने लोग कहते हैं आ सकते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए जरा, बस बाकी लोगों को लगता नहीं आ सकते। खंबे कच्चे हैं क्या इधर के, हाँ? ऐसे आप लोग सोच रहे हो कि प्रभु जी इतनी मुश्किल से तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप खंबा तोड़वा दोगे, है ना, ये भी चिंतन हो सकता है जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, आप वरिष्ठ हैं। लेकिन भगवान आ सकते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा है भगवान की भक्ति में, इन तात्पर्यों में, प्रभुपाद जी के इन अनुवादों में, उतना अधिक भगवान का अनुभव आपको अपने जीवन में होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजामि अहम्, जो जितनी प्रतिशत मेरी शरण में आएगा उतना प्रतिशत उस पर मैं कृपा करूं, अनुभव है ना, प्रतिशत को बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिशत बढ़ाते नहीं है और नेगेटिविटी बढ़ाते रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गलत चीजों का चिंतन करने से दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए किसी ने कुछ गलत काम किया तो दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर आप उसका चिंतन करते रहते हैं, ये गलत है ये गलत है ये गलत है ये गलत, तो दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, किस पर प्रभाव पड़ता है? मैंने एक बार हिजोलियंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा, मैं कहा महाराज अगर इस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो लेकिन हम उसके साथ साधुता का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वैसे किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, लेकिन अब क्या है कि हम तो साधुता का व्यवहार कर रहे हैं, अब न्यूट्रल हो गई सिचुएशन, ना वो बुरा कर रहा है ना हमसे रिलेशन है ना कुछ है, लेकिन जब सामने आता है दृष्टि पड़ते ही वो फ्लैशबैक में सारे, जैसे होता है सीरियल दिखाते हैं, सारा सीरियल घूम जाता है पीछे, पहला एपिसोड से शुरू होती है कहानी 175 एपिसोड तक लेके जाती है पूरा। तो क्या करें महाराज? महाराज ने उत्तर दिया, तकलीफ में कौन रहेगा, हु इज एट द फॉल्ट, महाराज ने बोला तकलीफ में कौन रहेगा। तो बोले मान लीजिए आप चिंतन करते करते आपका अंतकाल आ गया, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अंतकाल आया जैसा चिंतन किया वैसा शरीर पाओगे, इतनी घृणा के साथ में शरीर छोड़कर चले आओ क्या मिलेगा, करने दो, सुधारक मत भरो, हम सुधारक बन जाते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है अथॉरिटी को बोल दो ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके बाद तू जाने भगवान जाने गुरु जाने अथॉरिटी जाने, मैं क्या जानू, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अगर हम कर पाएंगे तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सारा खेल मन का है, सुख दुखा नाम, मन हमारा जिस प्रकार से फंस जाएगा, आत्मा को सुख और दुख की अनुभूति उसी के प्रकार से होती है। एक अंतिम श्लोक बताकर के समाप्त करूंगा। अंतिम श्लोक है, भगवान ने मन के ऊपर बहुत सुंदर एक श्लोक का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, उद्धरेत आत्मन आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मन एव हि आत्मनो बंधुर आत्म एव रिपुरात्मनः। उद्धर आत्मन आत्मनम, मनुष्य को अपने मन का सहायता से ही अपना उद्धार करना पड़ेगा। उद्धार भी किससे होगा? मन से। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन ही इस फजीत में फंसा देता है। हम यही ढूंढते रह जाते हैं किसने कौन कौन गलत कर रहा है। प्रभु जी को बताऊंगा, प्रभु जी आपको पता है क्या हो रहा है मंदिर में, यही करते रह जाना। और ऊपर मन ही मिलावत राम से, और एक मन ही है, बंदुर एवं रिपुर एवं, मंदु भी वही है रिपु भी वही है। मन को देखना है किस प्रकार से लगाना है। जैसे वृंदावन में गधे को कहते हैं, गधे का एक नाम है वृंदावन में। अब वृंदावन की दृष्टि बड़ी सुनहरी है, हर चीज को बड़े सुनहरी दृष्टि से वृंदावन धाम देखता है, इसलिए गधों को भी वृंदावन में क्या कहा जाता है जानते हैं? क्या कहते हैं वृंदावन में गधे को? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वृंदावन में गधे को? कहते हैं वैशाख नंदन। हाँ जी, क्या कहते हैं? वैशाख नंदन। वैशाख मास आता है ना, वैशाख नंदन उनका नाम है। वैशाख मास के अंदर वो बड़ा प्रसन्न रहता है, इसलिए उसको वैशाख का पुत्र कहा गया। वैशाख मास होता है ग्रीष्म ऋतु काल, उस काल में पूरी घास मुरझा जाती है। तो वैशाख मास में जब पूर्ण घास मुरझा जाती है तो ऐसी अवस्था में गधे को लगता है कि यार मेरी ना पोटेंशियल बढ़ गया है, मैंने ना सारी घास खा ली, तो बड़ा प्रसन्न घूमता है और ओवरलोडिंग करता है। दुनिया देख रही होती है गधा, पसीना बह रहा है शरीर से, जीभ लटक रही है, मेहनत कर रहा होता है वैशाख महीने में ग्रीष्म ऋतु। क्यों? दृष्टि में लग रहा है मैंने सारी घास, मन। और जब वर्षा ऋतु आती है उसमें हरी हरी घास होती है, खा भी लेता है, पेट भी भर जाता है, पेट साफ भी कर लेता है, वजन ही नहीं उठाता, दो भी परेशान हो जाता है वजन नहीं उठा रहा है, कैसा हो गया है। क्यों? कारण क्या है? वैशाख नंदन को बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं कितना कमजोर हो गया हूं, सारी घास पड़ी है, मैं खा ही नहीं पा रहा हूं, बीमार हो गया हूं, खा ही नहीं पा रहा हूं। और वैशाख मास में मैं सारी खा जाता हूं, ना वो खा रहा था। तो ये वैशाख नंदन, हम भी वैसे ही है। मन के कारण हम भी सोचते रहते हैं ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, मैं बस ऐसा कर दूंगा तो हिस्सा हो जाएगा। मैं कुछ खेल कुछ नहीं है। महाराज खटवांग की कथा आती है भागवतम में। महाराज खटवांग ने जब बहुत सारे राजाओं की मदद करी, तो मैं सोच रहा था इस प्रसंग के बारे में कि महाराज खटवांग ने राजाओं से, जब देवताओं से पूछा कि मैंने आप लोगों की इतनी मदद करी, पृथ्वी का राजा हूं, इक्ष्वाकु वंश में आता हूं, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे वापस आप पुनः पृथ्वी पर भेज रहे हैं, नीचे का काल तो तेजी से घूम रहा है और ऊपर का काल और नीचे के काल में तो युग पर्यंतर हो जाता है, नीचे तो मेरे लोग रहे नहीं, मेरी उम्र बीत चुकी है, नीचे जाऊंगा तो नीचे तो बहुत उम्र निकल गई होगी, तो मेरे मरने का समय कितना बचा है। ये हर एक भक्त का चिंतन होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू जब बनाते हैं ना, तो ये चिंतन होना चाहिए कि अब लिखते हैं 28 ईयर ओल्ड, आज मैं 28 साल पुराना हो गया। और पुरानी वस्तु के लिए कोई कीर्तन करे, कोई नाचे गाए, ये वैष्णव विधि नहीं है। परंतु फिर भी क्योंकि हम प्रीचिंग मूवमेंट में हैं, तो वैष्णवास कहते चलो ठीक है, केक काट लो, हरे कृष्णा गा लो, ठीक है, परंतु वैष्णव विधि नहीं है। क्योंकि हम पुराने हो रहे हैं और मौत के नजदीक जा रहे हैं, शमशान घाट जाने की यात्रा नजदीक आ रही है, उस यात्रा का चिंतन करके कौन खुशी बनाएगा? कौन खुशी? खुशी बनाने का टाइम ही नहीं है, टाइम कम है, भगवान का चिंतन करो। खटवांग महाराज ने पूछा कितना समय बचा है, तुरंत बताइए मेरी मृत्यु में। तो उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के लिए बहुत कम समय बचा है और कुछ ही क्षणों में आपकी मृत्यु आने वाली है। तो खटवांग महाराज ने क्या किया, अगर हमको पता चले इस कक्षा के बाहर आज प्रभु जी हरे कृष्णा गोलोक धाम, तो आधे से ज्यादा तो भागवत सुनने वाले हैं वो घबरा जाएंगे, अरे कथा ही तो सुनने आए थे, हमने कब का गोलोक धाम जाना, हमको नहीं जाना है, अभी घर में बहुत काम बाकी है। अच्छा जाना भी है तो थोड़ा टाइम दे दो, बच्चों के नाम पे जरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, मंदिर में एक ईंट लगाने की बहुत दिन से सोच रहे थे, एक ईंट लगा दें, कुछ कुछ सेवा कर दे, डोनेशन, बहुत सारा काम याद आएगा उस टाइम, तुरंत जाने के लिए तत्पर। तुकाराम महाराज जब उनको विमान आया वैकुंठ से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर के जरा प्रॉपर्टी का काम कर लो, कुछ रखा ही नहीं अपने जीवन में प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर करना, विमान आया ऊपर बैठ गए और गाने लग गए, अमी जाता आमचा गावा, मैं जा रहा हूं अपने गांव, सब का राम राम रामा, मैं जा रहा हूं अपने गांव गोलोक धाम, सबको राम राम करता हूं। अपने घर जाने की खुशी होनी चाहिए ना, और किसी व्यक्ति को पता चला गोलोक धाम रोने लग जाए, मरना नहीं चाहता हूं, मर थोड़ी रहे हो, गोलोक धाम जा रहे हो, एक कमरे के मकान से इस दुखालयम से उस शाश्वत सुखालयम में जाने का मौका मिले तो रोएगा कोई आदमी? मूर्ख रोएगा जो भागवत सुनता नहीं है, सोचता नहीं है, चिंतन नहीं करता। विशाख नंदन रोता है, है? गधा बोलूंगा तो दुख लगेगा ना, तो आप लोग भी अभी से ऐसा बोला करो, काम नहीं करते कहीं के विशाख नंदन, तो बेचारे को बुरा नहीं लगेगा, वृंदावन की भाषा है, है ना, वैदिक भाषा है। तो खटवांग महाराज को पता चला कुछ समय बचा है, उन्होंने अपने मन को भगवान पे लगाया। आप देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इन प्रार्थनाओं के साथ समाप्त करेंगे। उन्होंने प्रार्थना करी, महाराज खटवांग ने सोचा मुझे ब्राह्मणों से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। पहली चीज क्या सोची, मुझे ब्राह्मणों से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। दूसरा चीज उन्होंने सोची, बचपन में भी नगण्य वस्तुएं या धर्महीन सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ। पहली चीज मुझे क्या पसंद थी, ब्राह्मण, बचपन से लेकर के मैंने कभी भी धर्महीन सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ, और भगवान से बढ़कर तत्पूर्ण इस संसार में मुझे कोई वस्तु मिल भी नहीं पाई। देवताओं के सामने वो प्रार्थना करने लगे तुरंत ही। चौथी प्रार्थना उन्होंने करी, तीनों लोगों के अधिष्ठात्री देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते हैं, किंतु मुझे उनका वर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है जिन्होंने इस संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक है। देवता कह रहे थे नीचे जाके क्या मिलेगा, हमें आपको यहीं का राजा बना देते। कहा नहीं जाऊंगा, नीचे जाने में समय कितना, मृत्यु में? कहा बहुत कम। तो उन्होंने कहा वर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भगवान का धाम चाहिए। यद्यपि देवताओं का स्वर्ग लोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनका मन भी, इंद्रियां भी, भौतिक बुद्धि अवस्थाओं से इतनी मलित रहती है कि वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। स्वर्गवासी होने के बाद भी भगवान नहीं मिलते हैं तो क्या फायदा स्वर्ग जाने का, स्वर्ग जाने के बाद भी भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। तो उन्होंने कहा क्या फायदा मिलेगा मुझे भगवान यहां पर आने का, देवताओं से कहा मुझे यहां मत लाइए। खटवांग महाराज ने कहा मैं तो भगवान के धाम में जाना चाहता हूं। और इस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का प्रिय श्लोक रूप गोस्वामी के द्वारा जो उद्धृत है, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते, का वर्णन करते हुए कहते हैं महाप्रभु ने जिस प्रकार का वैराग्य दिखाया वैसा वैराग्य दिखाना चाहिए। महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में ही अपने परिवार का परित्याग कर दिया, संसार के प्रचार करने के लिए अपनी लक्ष्मी स्वरूपा सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया। भगवान को वैसे प्रचार कर सकते थे पत्नी के साथ भी, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, पहले मैंने गृहस्थाश्रम में प्रचार किया था जब मैं कृष्ण आया था, लेकिन अब मैं चैतन्य रूप में संन्यास आश्रम में प्रचार करूंगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रचार किया तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा धर्म पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृष्णम बुध भ्रियस्तम अहम प्रपद्ये। ऐसे भगवान श्री चैतन्य के नतमस्तक हो जाते थे सभी लोग देखते ही, भगवान गौरंग महाप्रभु को देखते। तो खटवांग महाराज कह रहे हैं इस संसार में रहने का फायदा क्या, नीचे जाऊंगा पृथ्वी पर भगवान की लीलाओं का चिंतन करूंगा, उनके भागवत संदेशों का चिंतन करूंगा, क्योंकि बचपन से मैंने वही किया है। और ऐसा करते हुए निष्कर्ष दिया गया है, भागवत में वर्णन नहीं है कि क्या हुआ, ये नहीं बताया गया कि उनको भगवत धाम मिला या क्या मिला, भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा गया कि अगर किसी व्यक्ति की ऐसी चित्त वृत्ति हो तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवत धाम मिलता है, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा भगवत धाम मिल गया, चित्त वृत्ति अगर ऐसी हो, अगर किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन सीईटी की तैयारी करी हो तो वो डॉक्टरी में एडमिशन नहीं लेगा, इंजीनियर बनेगा। किसी ने आईआईटी में एडमिशन लिया है तो 4 साल बाद उसे ये नहीं कहेंगे ओ आज से आप एमबीबीएस डॉक्टर, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया एम्स हॉस्पिटल में कहेंगे 5 साल बाद आप बन गए हमारे सिविल इंजीनियर, ऐसा तो नहीं। जो व्यक्ति जैसी चित्त वृत्ति रखेगा, जिस प्रक्रिया में जुड़ेगा, वैसा ही आगे होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। समय अधिक लिया मैंने आपका, क्षमा चाहता हूं अधिक समय के कारण, कुछ त्रुटि की हो तो उनके लिए क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा।